अब मैं आपके सामने एक उर्दू का डॉक्यूमेंट जो है वो इस सोच के साथ पढ़ूंगी कि आपको इसमें से क्लूज मिल जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही आपको हम अपना छपा हुआ कोई ऐसा देंगे भी कि जिसमें हम इन दोनों को मिलाकर मोर डिटेल करेंगे। ये एक वसीयतनामा है, इसको हम पढ़ते हैं कि अगर हमें अपनी वसीयत तैयार करनी पड़े तो कैसे होगी। वसीयतनामा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फुला, जगह खाली छोड़ दें, खुद लिख अपना बनाएं, कैसा लगता है आपको? फुला अपना नाम आप लिखेंगे, वालिद का नाम, बेटी आप किन की हैं। अपने वारिसों को वसीयत करती हूँ, मर्द को करेगा तो वो करता है कर देगा। मेरे मरने के बाद मेरे तमाम वारिस हर मामले में अल्लाह सुबहानहु ताला और इसके रसूल की इताअत करें। बस इसमें आप एक कोड वर्ड लिख लें कि वारिस अल्लाह और रसूल की इताअत करें। अल्लाह सुबहान ताला की रजा को हर चीज पर मुकदम रखें। जाती इबादात के अलावा दीन की खिदमत को अपनी जिंदगी का मिशन बनाएं। ये जुमला कब बोलेंगे? जब आपने खुद भी इसको अपना मिशन बनाया होगा। बाय द वे, आप में से कितने लोगों को लगता है कि दीन की खिदमत आपका मिशन है? जी सोचना है इस पे। अगर ये नहीं है तो हम मिशन मोहम्मदी पे नहीं है। नबी का मिशन यही था, कुम फानजर, ऐसे खड़े हुए कि आखिरी दिन तक खड़े ही रहे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर इसका अगला नुक्ता क्या है कि मेरी वफात पर मेरे लवाहकीन अल्लाह सुबहान ताला से अजर की खातिर सब्र से काम ले। तो बस सब्र लफ्ज लिख लीजिए, बाकी बात आप खुद लिख लेंगे बाद में। और बहुत ज्यादा रोने धोने, चीखो पुकार और बैन करने से इज्तनाब करें। गम की हालत में मुंह से खिलाफे शरा बात ना निकालें जो अल्लाह सुबहान ताला की नाराजगी का सबब बने। फिर अगला नुक्ता है, सुन्नत के मुताबिक मेरे गुसल और कफन दफन का बंदोबस्त करें। मेरे चेहरे को किसी भी नामहरम के सामने ना खोलें। मैयत की तस्वीर और वीडियो ना बनाएं। आजकल तो ये भी एक मसला हो गया ना, तो लिहाजा मैयत की तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए। मुझे इंतहाई दुख होता है जब लोग बताते हैं फलां का जनाजा हमने स्काइप पे देखा, उसका देखा, व्हाट्सएप पे देखा। औसुबिल्लाशानी, कल के सेशन में हमने बात की थी कि मुंह भी ना दिखाएं, तो कहां आप तस्वीरें खींचे? फिर अगर आपने जरा कहीं डार्क में खींची, फ्लैश ना चला, तो दूसरे दूर बैठे गम में मुबतला हो जाएंगे कि हमारे मरने वाले के चेहरे पे तो नूरी नहीं, वो तो काला हो गया चेहरा। और किसी को बहुत फ्लैश लगा के दें तो हम लोग यही कमेंट देते रहेंगे, देखो कितना नूर था चेहरे पे। तो जरूरत क्या है किसी के राज खोलने की? अल्लाह का राज है, अल्लाह पे डाल दीजिए। फिर इसी तरह से जनाजा जल्दी पढ़ाएं और जल्द कब्रिस्तान पहुंचाएं। गैर शरई रसूमात यानी कुल, चालीसवां, जुमेरातें और दीगर बिदात से इज्तनाब करें। मेरे लिए बख्शिश और आसान हिसाब की दुआ करें। अगर मेरी वफात बैरून मुल्क हो तो मुझे मेरी वफात वाले मुकाम पर ही दफन करें। आप लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आपको इसका बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि मुझे नॉर्वे का थोड़ा सा किसी ने एक मौके पर फिक्र बताया था कि आप नॉर्वे से पाकिस्तान जाते हैं तो अमूमन 1000 पाउंड के अराउंड को टिकट आ जाती होगी, और अपनी एयरलाइंस तो शायद फ्री लेके जाती हैं डेड बॉडीज को, लेकिन दूसरे मुल्कों के ले जाएं तो इससे कई गुना ज्यादा पैसा लगता है। फर्क क्या पड़ेगा? सारी जिंदगी कई लोग नॉर्वे में हैं या बाहर हैं, या आप अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, तो डेड बॉडी लेके जानी है क्या? आपके रिश्तेदारों बेचारों का यही नसीब है कि वो आपका मरा हुआ मुंह देखे? कई बच्चे हैं सारी जिंदगी बाहर रहते हैं, बाद में मरते हैं, बूढ़े माँ बाप को उनकी डेड बॉडी दिखाते हैं। मैं तो कहती ना दिखाओ, उनको यही लगेगा ना जहां थे वहीं हैं। तो लिहाजा ये और दुख देने वाली कैफियत है। और फिर जो उनके साथ सलूक किया जाता है, जिस तरह उनके जिस्म से खून निचोड़ा जाता है और दवाइयां डाली जाती हैं, अल्लाह ताला पनाह में दे, एक एक जिस्म के उज्व को उन्होंने प्रिजर्व करना होता है, और ये स्किन के जो पोर्स होते हैं इसमें इंजेक्शन लगते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई काम ना करें, बस दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने नबी के शहर में मौत दे और हम वहीं दफन हो जाएं। मेरी कब्र लहद वाली बनाएं, इसे कच्चा या सादा रखें और कोई इजाफी चीज साथ ना रखें। ये क्या होती है? इंशाल्लाह भी हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे। कब्र को संगे मरमर या किसी और चीज से पुख्ता ना करें, कच्ची कब्र बनाना सुन्नत है। अब आप कहेंगे अल्लाह के नबी की तो आज बहुत प्यारा रोजा है, तो उसके अंदर कब्र कच्ची है, वो कब्र तो कई हाथ नीची है, ये तो ऊपर एक आज की जरूरत के तहत बना हुआ है। अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक आज भी कच्ची है। मेरी औलाद और उनकी औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें और इन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम भी दें। हज मुझ पर फर्ज हो चुका था, मैंने नफली हज की नजर मानी थी, लेकिन बावजूद नीयत और इस्तेताद के हज नहीं कर सकी। پس ترکے میں سے اخراجات کے لیے رقم الگ کر لیں اور آئندہ سال حج کے موقع پر کسی ایسے دیندار، متقی اور حج کے خواہش مند کو اس رقم سے میرا حج بدل کروائیں جو اپنا فرض حج کر چکا ہو۔ اچھا، یہ حصہ کس میں آئے گا بھلا؟ وصیت میں آئے گا جی، 1/3 کے اندر آئے گا۔ ٹھیک ہے، وارثوں کا حق نہیں دینا، وصیت میں سے دینا۔ ٹھیک ہے، میرے ذمہ کل اتنے، اب ادھر آپ ڈیش ڈال دیجئے، اتنے روزوں کی قضا واجب ہے، میرے وارث یہ قضا روزے پورے کریں، اگر روزے نہ رکھ سکیں تو میرے مال میں سے مسکینوں کو فدیے کا کھانا کھلا دیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو روزے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں نا، اس کو انشاءاللہ نوٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فعدت من ایام نخر، گنتی پوری کرنی ہے۔ آپ ہی اپنی زندگی کے پچھلے روزے یاد کیجئے، اگر آپ پہلے نہیں رکھتی تھی چھٹے ہوئے روزے، جب سے آپ بالغ ہوئیں تب سے اب تک سالوں کو اپنے دنوں سے ضرب دے لیں، اور ہر مہینے میں نفلی روزوں کی نیت پہ پیر جمعرات یا یام 20 کے روزے رکھ کے اس کو پورا کر لیں۔ انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنیں گی آگے جا کر۔ پھر اسی طرح مال وراثت کا زیادہ سے زیادہ ایک تہائی حصہ میرے وارث اپنی مرضی سے غیر وارثوں میں، یا میرے ترکے میں سے ایک تہائی حصہ فی سبیل اللہ، دینی خدمات سر انجام دینے والے ادارے۔ اب اگر آپ چاہیں تو کسی خاص ادارے کا نام لکھ دیں جس کا آپ دل چاہے، اس میں یعنی ڈیش میں جمع کروا دیں۔ تمام وارثین کی اجازت سے میری کتابیں، خاص طور پر اسلامی کتب، اگر گھر میں کوئی نہ پڑھے، کوئسچن ہے کیوں نہ پڑھے، اپنے گھر والوں کو زندگی میں اس قابل کریں کہ وہ آپ کی کتابیں اور آپ کی ڈائریاں پڑھیں، تو انہیں ضرورت مند طالب علموں یا لائبریری میں دے دیں۔ میرے مرنے کے بعد میری وراثت شریعت کے مطابق وارثوں میں جلد از جلد تقسیم کر دیں، 3 دن کے اندر کر دینا چاہیے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے اس بات کی یاد دہانی کر لیں کہ میرے ذمہ کسی کی واجب الادا، یعنی جو میں نے پے کرنا ہے ابھی، اس کو رقم یا زکوٰۃ تو باقی نہیں رہتی، اس کی ادائیگی میرے مال سے کر دیں، کیونکہ اگر بعد میں کریں گے تو پھر کس کس سے حصے میں سے نکالیں گے، تو یہ سب ایکسپنسز پہلے نکال کر اینڈ پہ بانٹیں۔ میری وفات پر موجود لوگوں سے میرے قرض کے بارے میں معلوم کر لیں، اگر قرض میرے مال وراثت سے زیادہ ہو تو میری درخواست ہے کہ میرے ورثاء یا کوئی خیر خواہ اس کو میری طرف سے ادا کر دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، زیادہ قرض تھا، مال کم تھا، تو پھر کوئی اور آپ کے لیے ادا کر دے، اگر وہ استطاعت نہ رکھتے تو قرض خواہ مجھے معاف کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے معاملے آسان کرے گا۔ اس کے بعد ایک چارٹ ہے، آپ ایسے ہی بنا سکتے ہیں، کالم سا، 2 کالم ہے بیسیکلی، ایک پتلا اور ایک لمبا، میرے مال کی تفصیل۔ اب یہ لکھنا ہے، سب سے اوپر والے کالم میں ایک سائڈ پہ جو رائٹ سائڈ ہے اس پہ لکھ لیجئے سونا، اب آگے جگہ خالی چھوڑ دیں، جتنا بھی ہے آپ کیسے ایک سائڈ دو جو بھی چار جتنا ہے اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیں کہ میرے پاس سونا اتنا ہے، روپے منی فورن کرنسی اتنی ہے، جائیداد زمین مکان اتنا ہے، دیگر اشیاء، اور اس حصے کو شوہر سے چھپا کے رکھیں، اور شوہر ہے تو وہ بیوی سے چھپا کے رکھیں، پتہ چلا کہ وہ پڑھ چکے تو وہ کہ تم نے مرنا پتہ نہیں کب، بلا کے دو۔ تو بہرحال یہ ایک صرف لائٹ بات ہے، تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو چھپانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ ہمارے پاس کچھ امانتیں ہوتی ہیں نا، تو اس کا بھی ذکر کر دیں کہ میرے پاس فلاں کی، ان کا نام لکھیے، اتنی رقم یا اتنی چیزیں یا اس کا فون یا پاسپورٹ یا کوئی چیز بطور امانت رکھی ہوئی ہے، وہ ان کو واپس کر دیں۔ پھر میرے پاس فلاں کی رقم واجب الادا ہے، ان کو ادا کر دیں، یعنی جو ریمائنڈرز ہیں نا وہ اس پہ لکھ دیں۔ پھر اسی طرح اپنی یعنی شوہر یا بیوی، والدین، شوہر کے فلاں، تمام رشتہ داروں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ وہ مجھے دل سے معاف کر دیں، میں ان سب لوگوں سے معافی کی درخواست گار ہوں جن کو میری ذات سے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچا ہو، خاص طور پہ آگے ڈیش چھوڑ دیں، شاید زندگی میں آپ کا اپنی نن سے کوئی جھگڑا ہی رہا ہو ساری عمر، ہو سکتا ہے آپ نے اپنی بھابھی کا دل ہی دکھایا ہو، تو نام لکھ دیجئے کہ ان کو تو خاص طور پر کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ نیچے ایک سائڈ پہ اپنے سائن کی جگہ چھوڑ دیں، دوسری طرف ڈیٹ چھوڑ دیں، اور 2 گواہ جو ہیں اس کے نیچے رکھیں۔ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تھرو ہمیں ملا تھا، تو یہ اسی کو میں نے پڑھ دیا کہ جنہوں نے اس کو بنایا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، لیکن یہ میں ابھی کافی چیزیں ابھی اور ایڈ ہو سکتی ہیں، ابھی آج تو بلکہ وہ لانگ ڈاکیومنٹ پڑھنے کے بعد ذہن میں کئی چیزیں اور بھی آئی ہیں، لیکن آپ اس کو ایک سمجھیں کہ ٹول سمجھتے ہوئے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سرخرو کر دے، اور ہمارا وصیت نامہ شاید 4 لفظوں کا ہی ہو، لمبی چوڑی کہانی اس میں نہ کر سکے۔ اب آپ کا وقت ہے، सवाल, कोई डिस्कशन, क्या सीखा, इस हिस्से से आपको क्या मिला, तो मोस्ट वेलकम जी। आप सिस्टर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबको इस बहन ने वो बात की है जो दुख था ना सूरा। देखिए अभी इसी सीरीज में ही इस मौजू पे पूरा सेशन हुआ है कि आज की उम्मत मुस्लिमा लग्जरियस जिंदगी के अंदर खो गई। आज हमारे पास शिर्क का इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुसलमान बुत नहीं पूजता, आज मुसलमान कब्रों पे कम जाता है, वो हैं जाने वाले बहुत सारे अनपढ़ किस्म के, लेकिन आज का पढ़ा लिखा मुहज्जब और वेस्टर्नाइज मुसलमान शिर्क नहीं करता। लेकिन आज का सबसे बड़ा मसला लग्जरियस लाइफ और उसके अंदर ये इंटरेस्ट है। मैं सोचती हूँ कि ये सदी, आज के दौर की ये जो सदी है ना, और पिछली भी गुजरी है, आज भी जा रही है, इस वक्त अगर हमने इस नासूर को ना ख़त्म किया तो हमारी नस्लें जो है ना, वो पता नहीं कहाँ बहक जाएंगी। और इन्होंने सच बोला, अब इनको भूल जाइए, ये तो इन्होंने हमें मौका दिया है बात करने का, लेकिन यकीन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो हज़रत आयशा कहती हैं कि जो चिराग उस वक्त जल रहा था, वो भी मैं एक यहूदी के पास जिरहा रहन में रख कर उधार लेकर आई थी। अल्लाह के नबी सल्लम किस घर में रहे थे? ये तो एक इतनी ना खत्म होने वाली मजबूरी बन जाती है। एक वक्त आता है, इन्होंने सच बोला, पहले छोटा लिया, फिर बड़ा लिया, फिर और भी लेना पड़ता है, और फिर अफसोस की बात है कि जब दीन को समझने वाला ऐसा करे और ऐसा करने वाले दूसरों का रास्ता रोकते हैं। कई ऐसे लोग हैं, घर नहीं ले सकते, हाँ मस्जिद ले लेते हैं। कई कहते हैं मस्जिद हमने बिलासूद ली है जी, लेकिन घर तो फिर हम ले सकते हैं। देखिए ना, किधर से पकड़े या इधर से, इतना शरह सदर है सूद के बारे में मेरा अपना, इतना कि मुझे आप दुनिया के किसी बड़े प्लेटफॉर्म में ले जाएं, सारी दुनिया के लोग वहां खड़े हो ना, मैं यकीन से कह सकती हूं कि आज के दौर में भी आप सूद से बच सकते हैं। और आज के दौर के मुसलमान भाइयों का, जो हमारे मर्द इस वक्त इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में, उसकी 98% रीजन सूद है। अल्लाह के नबी की हदीसें मौजूद हैं, जिस चीज में सूद लग जाता है वो चीज 40 साल के अंदर खत्म। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तबाह हो बर्बाद हो गई। आप अपने मुल्कों के कई ब्रांड नेम याद कर लीजिए, जो भी याद है कहीं, आज वो नहीं है। और वो किधर गए? उन्हीं की बेटी हमारे एक क्लास में थी, और उसने एक क्लास में, जैसे आज ये बहन रोई है, वो भी रो के सुना के गई थी कि किस तरह हमारी, यानी जिसको आप कहना चाहिए मोनोपोली थी, कपड़ा, गरम कपड़ा, अगर आप इशारे समझ जाएं, नाम लेने पसंद नहीं है ना हम लोग लेते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन बेताज बादशाह थे। मैं नाम लूं तो मेरा यकीन है कि आप में से 99% सिस्टर जानती हैं। आठ आठ गाड़ियां वो कहती हैं हमारे घर के बाहर खड़ी होती थी, जैसे मुंह में चमचा सोने का लेके हम जीते थे, लेकिन इस सूद ने अंदर से उस इंडस्ट्री को खोखला कर दिया हुआ था। और इतने फिर बैंकों के कर्जे चढ़े, इतना ब्लंडर हुआ कि हमारे घर के बाहर पुलिस आ गई थी, घर के पिछले दरवाजों से छुप छुपा कर जो घर के बड़े थे वो निकले, और उन्होंने ओवरनाइट फ्लाइटें बुक करा के अपना मुल्क छोड़ा, क्योंकि अपने मुल्क में कहीं उनको पनाह नहीं थी, उनके वारंट थे। घर में कौन बचा? बूढ़ा बाप, दादा था जो उस वक्त, और एक पोती जिसका वीजा नहीं था बाहर का, और दादा करीब ब्लाइंड के, यानी इतना कम कि उसको दिखता नहीं। और मसला ये पूछा था कि बताएं कि अब वो दादा और एक पोती जो बिल्कुल अर्ली, अभी यंग होती हुई बच्ची है, वो दो हैं इधर इस वक्त, बाकी सब जो रिश्तेदार थे वो बाहर के मुल्कों में निकल चुके हैं। और अब जो उधर गए तो उनको वहां कौन सी को खाला मामू आए हुए थे एयरपोर्ट पे लेने, जो फिर उन्होंने धक्के खाए। कभी आप सुने तो आप हैरान रह जाए। आठ आठ गाड़ियों के मालिक जो हैं वो बैरों की जॉब करते और वॉशरूम और टॉयलेट साफ करते हुए देखे गए ऐसे मुल्कों में आकर। और ये नई बात नहीं है, ये होगा, और अल्लाह करे दुनिया में ऐसा हो जाए, क्योंकि आखिरत में इसकी बड़ी सजा है। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा, मुझे मेराज के मौके पे दिखाया गया, कुछ लोगों के पेट मटके हैं बड़े बड़े और शीशे के बने हुए हैं, और उसमें सांप और बिच्छू हैं जो उसको अंदर से खा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्राइल से ये कौन है, तो फरमाया कि ये सूद खोर है। सूद, अब आप कहेंगे सूद खाने वाले हैं ना, हम तो नहीं, हम खाते तो नहीं। देखिए कोई कहते मैं जिना करता तो नहीं, कराता ही हूं ना, क्या कहेंगे इसको? मैं शराब पीता तो नहीं, पिलाता ही हूं ना, ये तो सारे ही कहते हैं आज के दौर में भी। ये बात तो इतनी तलख है, मैं कहती हूँ इस पे तो बस जब तक दिल के अंदर आपको यकीन नहीं होगा आपकी ये जड़ें नहीं टूटेंगी। और मैं कई लोगों को जानती हूँ कई सालों से, मैं कहती हूँ अभी भी आपकी ये बंदिशें नहीं टूटी, अभी भी और वक्त चाहिए। तो याद रखिए कि वही बात है कि जब मौत का फरिश्ता आएगा और कहेगा कि लौ लाखरतनी लाजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत दे दो फिर शायद हमारी कोई फैसला हो जाए, उससे बगैर ये फैसला हमारा होगा कोई नहीं। 10 10 साल से हम अभी जक्को तक्के में ही पड़े हैं कि पहले कुछ कारोबार और बन जाए तो करेंगे, अपना घर बन जाए तो करेंगे। इस वक्त भी मुझे कई साथी अपने नजर आ रहे हैं रूम में ऑनलाइन पे कि जिनकी मिसालें मैं दे सकती हूँ, और अगर वो खुद भी लेना चाहे माइक तो हैंड रेस करें। माशाल्लाह आप जैसी बाशौर ऐसी सिस्टर्स हैं कि जो कुरान सीखती हैं फिर वो जो स्टैंड लेती हैं वो तो फिर ऐसे खड़े होकर सुनाती हैं लोगों को कि लोग हमें इबरत लें। इसी तरह हमारी एक बहुत ही अच्छी साथी हैं और उन्होंने जब कोर्स ज्वाइन किया सबीलुल जन्ना तो वो सूरह बकरा जब पहुंची जहां पहली दफा ये मौजूद आता है, ये उनसे बार बार सुन के मुझे जितनी बात याद हुई हुई है क्योंकि वो अक्सर हर क्लास में माशाल्लाह जब भी हम ये आयतें पढ़ते हैं तो वो अपनी शेयरिंग करती हैं। कहती हैं कि जिस वक्त हमने ये आयतें पढ़ी उससे शायद चंद महीने या कुछ अरसा कुछ साल मतलब बहुत थोड़ा टाइम था हम अपना घर ले चुके थे सूद पे, और लोग लेते क्या सोच के बच्चों के काम आएगा। कहती उसी दिन समझ आ गई थी कि ये नहीं लेना, घर जाके मियाँ को बता दिया। शुरू में मियाँ कोई मानते? देखिए ये उसी दिन मानेंगे जिस दिन आपको यकीन होगा वो मानेंगे। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप ज्यादती नहीं करेंगे, आप उनको ये यकीन दिला देना कि इस घर के बेसमेंट में एक सांप का बच्चा जाता है कि उस घर में, अल्लाह ना करे मुझे और आपको यहाँ शक पड़ जाए कि एक सांप का बच्चा कहीं बैठा हुआ है। हम कितने इस वक्त माशाल्लाह, लेकिन हम इस बेसमेंट में नहीं आएंगे। लेकिन जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि सांप और बिच्छू वहां भरे पड़े हैं, सिर्फ यकीन दिलाने की बात है। और मुझे यकीन है कि मर्दों को तो कोई लग्जरियस घर और फैंसी चीजें चाहिए भी नहीं होती, ये हम औरतों का मसला है। बहरहाल शौहर को उन्होंने मनवा लिया, प्यार से मनाया, धमकी से मनाया कि मियाँ जी मेरा ये फैसला है आप जो करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 1.5 साल के अंदर अल्लाह ने उनको उससे पाक कर दिया। और लोग क्या सोचते थे अब इनका क्या बनेगा, फिर जो अल्लाह सबब लगाता है तो फिर और रोना आता है। जो चीजें छोड़ी होती हैं ना वही चीजें अल्लाह आपको फिर हलाल से बना के दे देता है। वह मई यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, सूरत अल्लाह की आयत 28वें बारे में, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए जरूर एग्जिट निकालेगा मखरज। और वह मई यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह उसका मामला आसान करेगा। वह यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी सच्ची कहानियां इसके बारे में तो अगर आज आप इधर से ये यकीन लेके उठेंगी ना तो मुझे यकीन है अल्लाह आपके लिए ये रास्ते खोलेगा। हमारे प्यारे हमें देख रहे होते हैं, ये अंदर अपने भी तो कहीं खौफ है ना, आप घर में जाते नहीं, आप घर में जाते हैं आप परेशान हैं, आपको डिप्रेशन है, आप दुखी हैं, घर वाले कैसे खुश हैं। और ऐसे ऐसे ब्रदर्स के जुमले मेरे कानों में कहते हैं ये घर मुझे खा गया, मेरी सारी कमाई ये घर खा गया, ऐसे जुमले। कभी याद रखिए ऐसे घरों में खैर नहीं होती। और फिर कारोबार लोगों के जिसमें आ जाता है तो इससे आजादी के लिए जिस चीज की जरूरत है ना वो ईमान है। आप कहते हैं जरा मोर इंफॉर्मेशन दीजिए, जरा क्या जायज है क्या नाजायज, फिर कहीं आप में से पूछ सकते हैं अच्छा कोई मुस्लिम लोन भी है कोई और है ना, तो ये इंफॉर्मेशन से मसला हल हुआ है बहुत लोगों को देखे देखी है ना, उनको आप किसी इसका अल्टरनेट पे ले आए। ये चीज जिस चीज के जरिए पॉसिबल होती है ना वो क्या है, या अय्युहल्लज़ी आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही। सूद की आयतों के फौरन बाद की आयतें पढ़े, तरतीब नजूल के एतबार से सबसे आखिरी आयत है क्या, ईमान वालों डर जाओ उस दिन से, तुरजो नफी अल्लाह, उस दिन का खौफ करो, क्यामत की बात है जिस दिन तुम उसके सामने पेश किए जाओगे। बिल्कुल आयत रिबा के बाद वत्तकु यौमन तुरजऊ नफीही इलल्लाह, तकवा। हजरत आयशा कहती है सूद की आयतें सबसे आखिर में नाजिल हुई, अल्लाह के नबी की जिंदगी के आखिरी दिन थे, अगर ये आगाज में होती तो शायद हम में से कोई इसको ले ना पाता। और इसी तरह फिर आपने कहा शराब भी हराम हो गई, तो अब हमारी भी तो जिंदगियों के आखिरी से शुरू नहीं हो गए, किसको पता है। आज सुबह किसी ने बताया कि 28 साल के एक मर्द का इंतकाल हो गया जिसकी बीवी 24 साल की और शायद 2 साल का बच्चा, किसी ने पता नहीं दुआ के लिए कहा। मैंने कहा क्या 28 साल, बीवी 24 साल की बच्ची है, एक बच्चा, क्या हुआ उसको? कहती अचानक हार्ट अटैक हुआ। तो मुझे गम लग गया, 28 साल में भी बंदा फोत हो सकता है, तो हम तो ऊपर पहुंच गए, है ना, सोचने की बात है। तो इंशाल्लाह जब यकीन होगा अल्लाह के साथ मन्नत मान ले क्या अल्लाह मैंने कर, और घर वालों से प्यार से मोहब्बत से हिकमत से और यकीन से बता दें कि नो मोर, झोंपड़ी में ले जाओ, पाकिस्तान के गांव में ले जाओ, सब छोड़ छाड़ के किसी जगह ले जाए, लेकिन मैंने इसमें नहीं रहना। आप करके देखें फिर अल्लाह आपके लिए कितनी आसानियां पैदा करता है।